अरुणिमा एकदम से मीरा को देखने लगती है। जब उसने अरुणिमा को बताया कि देव रशियन माफिया के लिए यहाँ पर रशियन कॉटन का काम करता है, अरुणिमा उसे हैरानी से देख रही थी। जब मीरा उसके पास आते हुए बोली, इतना घबराओ मत अरुणिमा, माना कि देव ने जो काम चुना है वो बहुत ही गलत है, लेकिन उसने कभी भी बच्चों के सामने अपने काम का असर नहीं होने दिया है। आज तुम्हारे पति ने जो किया था वो बहुत गलत था। मैं देव को हर चीज़ के लिए रोक सकती हूँ, लेकिन जब बात परिवार पर आती है तो देव किसी के रोके से नहीं रुकता है। अरुणिमा को और ज़्यादा घबराहट हो रही थी। मतलब देव भी माफिया और अंडरवर्ल्ड से कनेक्टेड था और आस्तिक के ऊपर गुस्सा भी था। इसका मतलब वो कुछ भी कर सकता है। जिस तरीके से उसने आस्तिक को गाड़ी से खींचकर बाहर निकाला था और जिस तरीके से वो उस पर हमला करने वाला था, अरुणिमा को बहुत घबराहट हो रही थी। उसने मीरा से कहा, मीरा इतना समय हो गया है, देव अभी तक वापस नहीं आया है, और आस्तिक, उसका क्या, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। प्लीज़ तुम मुझे यहाँ से जाने दो, मैं आस्तिक को ऐसे नहीं छोड़ सकती हूँ। मीरा ने तुरंत उसे रोकते हुए कहा, अरुणिमा, अगर तुम इस वक्त अपने पति के पास गईं तो तुम माहौल को और ज़्यादा ख़राब करोगी। मुझे पता है कि देव इस वक्त तुम्हारे पति से नाराज़ है, लेकिन मैं जानती हूँ वो उसे जान से नहीं मारेगा। लेकिन अरुणिमा ने तुरंत उसका हाथ झटकते हुए कहा, तुम पागल हो गई हो क्या? देव अपने पूरे आदमियों के साथ हाथों में हथियार लेकर आस्तिक के सामने खड़ा है, और तुम कह रही हो कि वो उसे जान से नहीं मारेगा? जितना तुमने अपने पति के बारे में बताया है कि वो अपने परिवार को लेकर कितना डेंजरस है, उसके हिसाब से तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि तुमने देव और आस्तिक को अकेला छोड़ा ही क्यों। ये सिर्फ तुम्हारा देव के लिए प्यार है जो तुम उसके लिए जारी हो, लेकिन मेरे आस्तिक का क्या? मीरा ने तुरंत कहा, अच्छा तो तुम अपने पति के लिए फ़िक्र में जारी हो, लेकिन ऐसा क्यों? तुमने तो कहा था कि तुम अपने पति से अलग हो गई हो और उसके साथ नहीं रहना चाहती हो, तो तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है अगर आज उसे कुछ हो भी जाता है? अरुणिमा की आँखें एकदम बड़ी हो जाती हैं और वो गुस्से में कहती है, पागल हो गई हो क्या? खबरदार जो ऐसा दोबारा कुछ कहा, तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम और देव मेरे दोस्त हो। उसकी बात सुनकर मीरा के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने हंसते हुए कहा, एक तरफ से उसके साथ भी नहीं रहना चाहती हो, दूसरी तरफ से उसकी फ़िक्र भी जा रही हो। कहीं तुम अपने पति से प्यार तो नहीं करती हो? हाँ करती हूँ मैं अपने आस्तिक से प्यार, और सिर्फ प्यार ही नहीं करती हूँ, पागलों की तरह प्यार करती हूँ। लेकिन मेरी प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैं उससे प्यार करती हूँ, प्रॉब्लम तो ये है कि वो पागल इंसान मुझसे ज़्यादा प्यार करता है, और इसी के लिए तो मैं उसकी ज़िंदगी से बहुत दूर जा रही थी, क्योंकि मेरा प्यार उसे बर्बाद कर देगा। मैं क्या करूँ, वो मेरा सब कुछ है, लेकिन मेरे साथ रहकर उसके पास उसका कुछ भी नहीं बचेगा। मीरा के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और उसने आराम से कुर्सी पर बैठते हुए कहा, वो तो मैं उसी पल समझ गई थी जब तुम उसे बचाने के लिए उसकी ओर भाग रही थी। मीरा पानी की बोतल उठाते हुए अरुणिमा को देती है और कहती है, लो पानी पियो और शांत हो जाओ। लेकिन आस्तिक की फिक्र में अरुणिमा के गले के नीचे से पानी भी कैसे उतर सकता था। उसने जल्दी से कहा, यहाँ पर देव और आस्तिक के बारे में सोचकर मेरी हालत खराब हो रही है और तुम इतनी रिलैक्स होकर बैठी हुई हो। मीरा सच बताओ, देव कहाँ ले गया है आस्तिक को? मीरा ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे खींचकर अपने पास बिठाते हुए कहा, अरे कहीं नहीं लेकर गया है देव तुम्हारे आस्तिक को, घर ही लेकर आएगा। इतना विश्वास दिलाती हूँ कि जिंदा लेकर आएगा। थोड़ी देर के लिए तुम अपने पति की फिक्र छोड़ो और मुझे बताओ कि जब तुम और तुम्हारा हस्बैंड एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं तो फिर तुम क्यों उसके साथ नहीं रहना चाहती हो और क्यों उससे दूर भाग रही हो? अरुणिमा के चेहरे पर एक चिंता झलक आती है। उसने तुरंत कहा, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हूँ और उसे फ्यूचर में कभी पिता बनने का सुख नहीं दे सकती हूँ। मीरा एकदम से बोली, क्या इसका मतलब तुम्हारा पति तुमसे बच्चों की एक्सपेक्टेशन कर रहा है और इसलिए तुम्हें अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दिया? अरुणिमा ने तुरंत नामे सिर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, आस्तिक को मुझसे कोई बच्चा नहीं चाहिए, वो सारी जिंदगी के लिए सिर्फ मेरे साथ रहने को तैयार है, लेकिन वो मैं हूँ जो इस सिचुएशन में आस्तिक के साथ नहीं रह सकती हूँ। मीरा को कुछ समझ ही नहीं आया, वो हैरानी से अरुणिमा को देख रही थी। उसकी उलझन को देखते हुए अरुणिमा ने मीरा को सब कुछ बता दिया, किस तरीके से उसकी प्रेगनेंसी खराब हो गई और कैसे आस्तिक के पिता ने उसके सामने एक शर्त रखी, लेकिन आस्तिक ने अपनी सारी दौलत को ठुकराकर सिर्फ अरुणिमा का साथ मांगा और अरुणिमा ने आस्तिक की खुशियों के लिए ही उसे छोड़ने का फैसला किया है। सब बताते हुए अरुणिमा की आंखें छलक आती हैं। उसने दर्द को समेटे हुए कहा, मुझे पता है कि आस्तिक ने सबके सामने ये कहा था कि उसके लिए मैं काफी हूँ और वो मेरे अलावा कभी जिंदगी में किसी बच्चे की कोई उम्मीद नहीं करेगा, लेकिन मैं जानती हूँ कि कल को जब किसी बच्चे को देखेगा तो उसके मन में भी पिता बनने का एक ख्याल आएगा और तब मेरा ये खालीपन उसकी जिंदगी में हमेशा हमेशा अंधेरा कर देगा। अब तो मीरा की आंखों में भी आंसू आ गए थे। उसने अरुणिमा को देखते हुए कहा, तो क्या तुम्हारे पति तुम्हारे मिसकैरेज का जिम्मेदार तुम्हें मानते हैं? अरुणिमा ने नामे सिर हिलाते हुए कहा, नहीं आस्तिक ने इसका जिम्मेदार मुझे नहीं माना है। हालांकि कुछ वक्त के लिए हम दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे थे, लेकिन वो सिचुएशन ही ऐसी थी। मुझे बस इतना पता है कि आस्तिक को जब इस बारे में पता चला तो वो बहुत दुखी हुआ था। मीरा अरुणिमा को संभालते हुए कहती है, लेकिन अरुणिमा तुम्हारे पति ने तुम्हें ढूंढ निकाला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम प्रेग्नेंट हो सकती हो या नहीं। तुम्हारा पति तुमसे सच में प्यार करता है और इसीलिए वो तुम्हारे साथ रहना चाहता है। मुझे लगता है फ्यूचर में भी कोई बच्चा तुम दोनों के बीच आ सकता है। तुम एक बार उसके बारे में सोचती क्यों नहीं हो? तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए तुम्हारा पति किसी भी हद तक जा सकता है। अगर तुम उसे यहाँ नहीं भी मिली होती तो जिस अंदाज से वो तुम्हें ढूंढ रहा था, मुझे लगता है वो तुम्हें धरती के आखिरी छोर तक तलाश करता। अरुणिमा हमेशा सिर हिलाते हुए कहती है, मुझे पता है कि मैं अगर आस्तिक के साथ कहीं तो उसके लिए मेरा प्यार काफी होगा, लेकिन मैं भविष्य के बारे में सोच रही हूँ। आस्तिक का पूरा भविष्य मेरे होने और ना होने पर निर्भर करता है। आज हम दोनों की उम्र है तो जवानी के जोश में शायद हम दोनों बच्चे की बात को एक तरफ रख भी दें, लेकिन कल को जब उम्र ढलेगी तब मुझे पता है वो भी दूसरे पुरुषों की तरह एक दिन अपना बच्चा होने के सपने जरूर देखेगा। मैं नहीं चाहती कि एक बच्चे के लिए और सिर्फ मेरे लिए वो अपने पूरे परिवार से बगावत करे। मीरा बेफिक्री के साथ अपने कंधे उठाते हुए सोफे से खड़ी हो जाती है और उसने कहा, मुझे लगता है तुम्हारा हस्बैंड बाकी जैसा नहीं है। जहाँ से मैंने देखा है मुझे वो काफी अलग नजर आया है। अगर उसे तुम्हारी परवाह नहीं होती तो वो तुम्हें ढूंढने भी नहीं आता। अरुणिमा ने अफसोस के साथ अपनी नजरें झुकाते हुए कहा, आई एम सॉरी, मेरी वजह से आस्तिक ने यहाँ सबको परेशान किया, तुम्हें और बच्चों को भी। मुझे बहुत खेद है कि ये सब मेरे कारण हुआ है। मीरा तुरंत बोली, बिल्कुल भी नहीं, ये सब तुम्हारी गलती नहीं है अरुणिमा, इसलिए इसके लिए खुद को दोष देने की कोशिश भी मत करना। तभी उन दोनों के कानों में गाड़ियों की आवाज आती है। अरुणिमा चौंक जाती है, लेकिन मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, देव आया है।
अरुणिमा जल्दी से खड़ी हो जाती है, लेकिन मीरा ने उसे रोकते हुए कहा, तुम यहीं रुको, पहले मैं जाकर देखती हूँ। अरुणिमा कुछ कहती या फिर वहां से बाहर आती उससे पहले ही मीरा कमरे से बाहर निकल जाती है और उसने कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। अरुणिमा जल्दी से दरवाजे पर आती है और दरवाजा पीटते हुए उसे खोलने के लिए कहती है, लेकिन मीरा ने उसके बात को नजरअंदाज करते हुए वो नीचे चली जाती है। अरुणिमा जल्दी से खिड़की की तरफ गई और उसने खिड़की का पर्दा हटाकर नीचे की तरफ देखा तो उसकी आंखें एकदम बड़ी हो जाती हैं। देव गाड़ी से बाहर निकला और पिछली सीट का दरवाजा खोलकर दो आदमी किसी को खींचकर बाहर निकाल रहे थे। अरुणिमा ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया ये देखकर कि वो आस्तिक है और इस समय शायद वो बेहोश है।